एक व्यक्ति अपने जीवन में सुखी है, स्त्री योग्य है, बेटे और बेटियां भी बड़े योग्य हैं, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, या सब प्रकार से दूसरा टाटा बिरला जैसे लोग हैं, सब प्रकार से वो लोग अपने को सुखी समझते हैं, ओहदा भी है, सब कुछ है, ऐसे लोगों को भजन करने की क्या जरूरत है? भगवान जब सब प्रकार से सुखी हैं, उनको कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं है, तो फिर वो लोग भगवान का भजन क्यों करें? श्रीमान रसानंद ब्रह्मचारी जी इस विषय पर कुछ बहुत तविध रखे। आ जाओ यहीं पर, एक बार बैठ करके ना होता, मैंने तो खड़ी होकर
पहले हमारे भारत का निर्णय लौटना चाहते हैं घर में, तब नारद जी ने उनको कुछ पूर्ण प्रश्न किया था। उनका सबसे पहला प्रश्न था, बच्चों ये बताओ तो ऐसे कौन सा चक्र है जो बिना घुमाए घूमता है, बता सकते हो? बच्चों ने कहा, गुरुजी हर चक्र को तो घुमाना ही पड़ता तभी तो घूमता है, अब वो तो बिना घुमाए घूमता है, फिर बताओ ऐसे कौन सा चक्र है जिनको घुमाने में कोई जरूरत नहीं लेकिन जो अपने आप घूमता रहता है, बता सकते हो? गुरु जी बोले, बच्चों ने बोले, गुरु जी हम भी बता सकते हैं। बोले ये काल चक्र है जिसको घुमाने का कोई जरूरत नहीं। आप बच्चे बने, धीरे धीरे जवानी आ गया, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, उसके बाद में राम नाम सत्य, पता नहीं कब ये बाल बच गया था, दांत टूट गया, और उसके बाद में पता नहीं कब राम नाम सत्य हो गया। इसलिए ये चक्र को घुमाने का जरूरत नहीं है, वो अपने आप घूमता है। इसलिए हम मातृगर्भ में श्री कपिल देव अपना माता विभूति को अपना दिव्य ज्ञान बता रहे हैं कि माता गर्भ में जब बच्चा को 7 महीने होता है उस समय सारे उसको पूर्वजन कुछ बात याद आता है, पहले जन्म में मैंने क्या क्या कर्म किया, और उसका कर्म स्वरूप अभी मातृगर्भ में ताती पेशाब को थली में रहना पड़ रहा है और कीड़ाएं काटते हैं, उसको बड़ा कष्ट होता है, प्रभु को पुकारता है, प्रभु जल्दी से जल्दी नरक से मुझे निकाल। प्रभु बोलते, बेटा अगर ये गर्भ से निकालना तो करो क्या? तो प्रभु मैं समझ गया संसार में कोई खुशी का नहीं है, ये संसार मतलब का संसार है, मैंने झूठ बेईमानी करके अपना पूरा परिवार मैंने भरण पोषण किया, सुख का समय तो सारा दुनिया साथ दिया, लेकिन जब कर्म का फल मैं भोग कर रहा हूँ तो मेरे बीवी कहाँ, मेरे पति कहाँ, मेरे बेटे कहाँ, मेरे माता पिता कहाँ है, कोई नहीं दुख का समय में। भगवान कहते हैं क्या करोगे जन्मदिन पर? कहते प्रभु कभी भी झूठा संसार में नहीं फंसूंगा, मैं काम पकड़ रहा हूँ, इस बार आप मेरे को जन्म दोगे तो केवल आपका भजन ही करूंगा। कहते अगर भूल जाओगे तो प्रभु को भूलूंगा नहीं। भगवान कहते देखो बेटा अगर कहीं भूल जाओगे मैं कभी साधु संत रूप में आऊंगा, आकर तुमको याद दिलाऊंगा, बेटा याद है मातृगर्भ में तुमने क्या कसम खा के लाया था, तुम्हें याद दिलाऊंगा। प्रतिज्ञा करता है प्रभु मैं तो आपका भजन भजन ही करूंगा, कुछ करूंगा नहीं, लेकिन जन्म लेते ही हम सब भूल जाते हैं, बोलते भजन कर दो, फिर तुलसी का कहा भजन कर लिया, टीवी देखने के लिए तीन घंटा, पेपर पढ़ के नाटक नवल पढ़ ली, लेकिन भजन करने का हमें कोई मौका नहीं। भगवान कहते माता देवती को, कहते भैया मैं बीच बीच में वार्निंग भी देता रहता हूँ, पहला वार्निंग है जब एक बात हो जाए, केस बढ़ जाए, ये पहला वार्निंग करा है, समय हो गया अभी चलने का है, भजन करो, मातृगर्भ में प्रतिज्ञा करके आए थे, फिर कलर लगा लेते हैं, फिर थोड़ी हम बुढ़ा होंगे कलर लगा लेते हैं, दूसरा मैं उसका आंख ले लेता हूँ, दूसरा वार्निंग है फिर चश्मा लगा लेते हैं, फिर तीसरे वार्निंग में दांत तोड़ देता हूँ, फिर नया दांत लगा लेते हैं, थोड़ी हम बुढ़ा होंगे, अब तो 7 साल तक हम जीता रहेंगे, भैया मैं वार्निंग देता रहता हूँ लेकिन ये सुनता ही नहीं, कुछ नहीं सुनता है, भजन भजन करता ही नहीं, फिर तो चौथा वार्निंग नहीं, फिर तो राम नाम सत्य है। इसलिए ये तो ऐसे एक चक्र है, फिर जो चक्र को घुमाने की जरूरत नहीं, जो चक्र अपने आप घूमता है। उनका दूसरा प्रश्न है, बच्चों बता सकते हो पिताजी का आदेश क्या है? हमारा पिताजी का आदेश यही दिया, जाओ गुरु गुरु भी पढ़ो, कहते नहीं जो परम पिता है भगवान का आदेश क्या जानते हो? तो प्रभु बताएंगे, कहते भगवान का एक ही आदेश है, स्मर्तत सततम विष्णु भी स्मर्तत न जात रखा सर्वे विधि निषेधा सुरतयारे वकीन करा, उनका यही आदेश है स्मर्तत सततम विष्णु, भगवान को हर समय याद करो, और निषेध क्या है कभी उनको भूल मत, यही उनका आदेश है। श्री कृष्णा गीता का जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, मैं मना भव मत भक्त भव माम जाजी माम नमस्कुरु, ये भगवान का गीता का सर्वश्रेष्ठ उपदेश है, बेटा मत मना भव, अपना मन को संपूर्ण मेरे चरण में लगा। मेरे को तुम पूजा कर लो, अगर इतना नहीं होता है माँ नमस्कुरु कम से कम मेरे को एक बार प्रणाम कर सकते हो। फिर उसको करने पर क्या होगा, कहते माँ एससी तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। फिर प्रभु आपको प्राप्त करने पर क्या होगा, फिर जब द्वारा निवर्तन जिस धाम में जाने पर फिर जगत में तुम्हें दो बार आना नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण जी का लास्ट में कहते हैं सर्व धर्मान पर त्यज माम एकम शरणम व्रज, तो सारे धर्म पर छोड़ करके केवल मेरे चरण में ही शरणापन्न हो जाए, तुमको सारे पाप से मैं छुटकारा दिला दूंगा, फिर धाम में ले जाऊंगा। फिर भगवान का यही आदेश है। उनका तीसरा प्रश्न है, बच्चों बता सकते हो ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में बहती है। गुरु जी नदियां तो एक तरफ में बहती, आप बोलते दो तरफ में, बता सकते हो ऐसे कौन सा नदी है जो एक साथ में दो तरफ में बहती रहती है। तो गुरु जी बता नहीं सकता, कहते ये जन्म और वृद्धि। ये जन्म हम कहते हैं हमारा बेटा एक महीना का हो गया, एक साल का, दो साल का तो नहीं, वो दो साल जो उसको एक बड़ा था उससे दो साल उसको घट गया है, दो साल कम हो गया, मतलब जन्म होने का साथ साथ उसका मृत्यु भी प्रारंभ हो गया है। वो बड़ा नहीं हो रहा है, वो मृत्यु की तरफ में बढ़ रहा है। इसलिए वो एक नदी है जो एक साथ में दो तरफ में बहती है। उनका चौथा प्रश्न है, बच्चों बता सकते हो ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र बोलता है। कौन सा हंस जो विचित्र बोलता है, हमको तो बता दे कौन सा हंस विचित्र बोलता है। कहिए शास्त्र है जो विचित्र बात करता है, क्या बात करता है हम तो यही जानते हैं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे पिता है, ये मेरे कारोबार है, हम यही जानते हैं। शास्त्र बोलते नहीं, तुम किसी जगह पर नहीं हो, तुम तो भगवान के चरण में रहने वाले। इसलिए एक मैगजीन निकलता था जिसका नाम था व्यापार है, मतलब अपना देश में लौट चलो, हम तो यही बता रहे ये देश हमारा। शास्त्र बोलते नहीं, तुम रिफ्यूज होकर कुछ दिन के लिए यहाँ आए हो, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम तो प्रभु का पास में रहने वाले हो, प्रभु का चरण में रहने वाले हो, प्रभु को भूलने के नाते ये संसार में आए हो, दो दिन बाद संसार तुमको छोड़ना ही पड़ेगा संसार को, और छोटे समय संसार में कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए भजन करो। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रश्न किया, ऐसे ऐसे उन्होंने उपदेश किया नारद, जिसको सुन करके उनको ऐसे विपद ज्ञान हुआ। विपद ज्ञान होते ही उन्होंने सबको सबके बच्चे सारे को सारे भगवान का भजन करने। इसलिए जो संसार है ये सुखमय नहीं है, कहते कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम का दास। जगत में कोई सुखी है नहीं, कोई तन दुखी तरह तरह से बीमार नहीं, ऐसे कोई नहीं यहाँ पर जो कि शरीर से भी दुखी नहीं है, सभी इसको किसका तरह से तन से कोई दुखी है, कोई मन दुखी, मन तो सभी तो दुखी दुखी मन में, भाई भाई में नहीं बनता, बहन बहन में नहीं, पति पति में नहीं, अड़ोस पड़ोस में नहीं, देश देश में नहीं, तरह तरह का दुख दुखी, और कोई धन बिना रहत उदास। इसलिए धन बिना सारा दुनिया ही उदास रहती है, भले ही सारा दुनिया उसको मिल जाए तो भी मन नहीं बनता है। कमाई कमाई मतलब कम आई और आनी चाहिए, कमाई कमाई और आनी चाहिए। इसलिए सारा दुनिया दुखी दुखी है, लेकिन सुखी कौन है, कहते सुखी कृष्ण का नाम का दास है, केवल भगवान को चरण को जो प्राप्त करते हैं केवल वही वास्तव में सुखी रह सकते हैं। इसलिए भागवत में प्रहलाद ध्रुव महाराज का कथा आता है, जिस समय ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए गए, उनका पहला इच्छा था मैं राजा बनूं और मैं भैया को राजमाता बनाऊं, इसी उद्देश्य से उन्होंने गए। लेकिन उन्होंने जब भगवान को आराधना करने की, जब प्रभु ने उनको दर्शन दिया, भगवान कहते ध्रुव मन में जो इच्छा तू मांग ले बेटा, जी भर कर तू मांग ले, क्या चाहते हो, धन दौलत पुत्र परिवार राज्य जो चाहते मांग लो। ध्रुव उसका उत्तर देता है, प्रभु स्थानाभिलाषी तपस्थित त्वां प्राप्तवान देवं निद्रगुह्यं काचं विच्छन अपि दीपरत्नं स्वामी कृतार्थस्मि वरं देव मुनिन्द्र बुझ्या देवता और मुनियों के लिए भी दुर्लभ आपका चरण कमल है। जब आपका चरण कमल मुझे प्राप्त हो गया प्रभु सब कुछ मुझको मिल गया है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं जब लब्धा च चापल लाभम मन्यते अधिकम तत जस्मिन् स्थितेन विना गुरुनापि विचलति। कृष्ण कहते हैं अर्जुन केवल मेरी भक्ति ऐसे की चीज होती है, केवल मेरी प्राप्ति ऐसे की वस्तु होता है मुझे पाने का बाद जन लब्धा च चापल लाभम जिनको पाने का बाद जीव को मन में और कोई इच्छा रहता है नहीं। उसको लगता है दुनिया में सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, संपूर्ण उसको शांति तत्प्रसादात परम शांति उनको कृपा से ही जीव को पूर्ण शांति उनको कृपा से ही मिलता है। इसलिए भागवत आप लोग श्रवण किए होंगे, भागवत में बड़ी बड़ी महाराज की कथा आती है। एक चित्रकेतु महाराज थे पूरा पृथ्वी का राजा थे लेकिन घर में सब कुछ पूर्ण है, धन दौलत सब कुछ है, कितना पत्नी कितना आपको पत्नियां थी तक 1 करोड़ पत्नी थी लेकिन उनको घर में कोई संतान नहीं था इसलिए दुखी है। इसलिए एक को बाद में शादी करते जा रहे हैं चाहते कि संतान हो जाएगा लेकिन ऐसे बाद में एक संतान हुआ जिसके लिए बड़े रोए बड़े दुखी हुए बड़े दुखी हुए। इसलिए भागवत में आज देखने का बड़े से बड़े बड़े महाराज का हाल रहा है लेकिन संपूर्ण राज्य को प्राप्त करते हुए भी कोई सुखी नहीं मिलता है। लेकिन लास्ट में जब सारे मोह माया को छोड़ कर दिए हुए जीवन में प्रभु का भजन करने के लिए गए भक्ति किया फिर तो उनको पूर्ण शांति थी तभी उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए अगर जीवन में हम लोग भी जीवन में पूर्ण रूप में शांति पाना चाहते हैं आप भागवत में सुने होंगे धुंधुकारी गोकर्ण का कथा है जिनका पुत्र बड़ी सुंदर है घर में अथाह धन दौलत है लेकिन पुत्र के लिए दुखी थे लेकिन ऐसे में पुत्र धुंधुकारी हुआ सारे धन दौलत ने चौपट कर दिया वैश्या घर में जाता था विश्व को साथ में रहता था पिता माता को शिकार किया उन्होंने लास्ट में प्रताप का बनना पड़ा। ये भागवत पद्म पुराण की कथा है महात्मा ने आप लोग सुने होंगे सब कुछ पत्नी बड़ी सुंदर है आत्मदेव बड़ा सुंदर है बड़ा प्रशंसा लेकिन सब कुछ रहते हुए भी लास्ट में देखा दुखी दुखी और सुखी का हुए तो उनको सुख सुख का मिला सुख तभी मिला जब गोकर्ण ने उनको पिताजी को उनको ज्ञान प्रदान किया कि पिताजी न चंद्र से सुखम नास्ति न सुधाम चक्रवर्ती सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिरे कांत जीविनम् इंद्र को ज्ञान दिया। पिताजी, न चंद्र से सुखम नास्ति। आप ये मत सोचिए स्वर्ग का अगर हम इंद्र बन जाएंगे तभी हम आनंद मिलेगा। आप कथा सुनाओगे इंद्र भी कभी स्वर्ग बनाए। इंद्र को शरीर में सांस नहीं, भाग हो गया। इंद्र को पता नहीं तो हाँ, हाँ भागना पड़ा। स्वर्ग का इंद्र होते हुए भी कितने बार दत्त कलर के वहां से। पिताजी की ये मत सोचो स्वर्ग का इंद्र होने पर सुखी रह जाओगे। नचेंद्र से सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्ती न ये मत सोचो अगर राजा बन जाओगे सुखी रहोगे। आपको पता होगा सोनिया गांधी क्यों राजगृह में बैठना नहीं चाहता था जैसे उनको पति भी मारे उनको राजीव गांधी इंदिरा गांधी मारे इसलिए उन्होंने सोचा अगर राजगृह में बैठे चलाते गोली मारते इसी डर के मारे सोनिया गांधी राजगृह में नहीं बैठा है। इसलिए पिताजी ये मत सोचो अगर देश का राजा बन जाओ तभी सुखी रहोगे। आप लोग तो आसानी से यहाँ पर आए कथा सुन रहे हो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आ जाए कितने पुलिस उनको साथ में कितने गार्ड चलते हैं उनको प्राण कैसे करना है कब मर नहीं जाए। इसलिए अगर नचेंद्र सुखम नास्ति सुखम नास्ति न सुखम चक्रवर्ती न बल्कि जिसको आप पास में ज्यादा पैसा धन दौलत वो उतना ही दुखी है उतना ही परेशानी है कभी सुखी कौन रहे कभी सुखम मस्ति एकांत मुन एकांत जीवन कभी जो संपूर्ण रूप में भगवान का चरण स्नान कर रहे संपूर्ण प्रभु के चरण में समर्पित आत्मा कहते पिताजी जगत में वही सुखी है। आप प्रह्लाद महाराज ने कथा सुने होंगे प्रह्लाद महाराज 5 साल का बच्चा उसको पिता त्रिभुवन विजय जिस पर डर मारे इंद्र भी स्वर्ग पद को छोड़ दिया लेकिन आपको पता है पिताजी उसको मारने के लिए कितने चेष्टा नहीं किया आग में जलाने की कोशिश किया सांप जैसे मारा क्या क्या नहीं किया लेकिन उसको बात ही बता नहीं कर पाया क्यों संपूर्ण रूप में उन्हें भगवान के चरण में वो समर्पित आत्मा थे। इसलिए उसी तरह अगर हम भी जीवन में प्रभु के चरण में समर्पित होंगे, प्रभु को भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तो हम भी जीवन में वैसे शांति और सुख में रह सकते हैं। यही बोल करके अपना वक्त को समाप्त करता हूँ।
शास्त्रों का उदाहरण देकर इन्होंने बतलाया मनुष्य जीवन में भजन करना अत्यंत आवश्यक। यदि विश्व के सारे वैद्य, डॉक्टर, साइंटिस्ट और सभी लोग मिल जाएं, तो एक पल के लिए हमारा बुढ़ापा रोक सकते हैं कि नहीं? नहीं रोक सकते। और हमें एक दिन शरीर छोड़ना होता है, इसको भी बंद कर देंगे या नहीं? बुढ़ापे अवस्था में जो रोग होता है उसे कौन हमें बचा सकता है? अभी तो जवानी है, जोश उमंग है, सोचते हैं हम सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ कर सकते। जहां बुढ़ापा आई, 80 वर्ष यदि बच गए और उसके बाद में कमर सीधी नहीं होगी, तरह तरह के रोग आएंगे, उस समय कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु बड़े दयालु हैं, पलक लगते ही विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि स्थिति प्रलय कर सकते हैं। दयालु होने के नाते तो बड़े दयालु हैं। यदि सारे दिन में एक बार भी उनका स्मरण कर लिया तो अजामिल जैसे व्यक्ति का भी उद्धार हो सकता है। हमारी गीता और भागवत हमारे प्राचीन संस्कृति की धरोहर है। विदेश के लोग उनके विचारों को मानते हैं आज विश्व में सर्वत्र, किंतु भारतवर्ष के लोग सजी नहीं मानना चाहते। आप लोग भी सवेरे एक बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और अपना कारोबार कीजिए, गृहस्थ धर्म निभाइए, दूसरों की चोरी मत कीजिए, अहिंसा से बचिए, क्रोध से बचिए, घर में रह करके भी आपका भगवान का भजन करने से कल्याण हो सकता है। बन जाने की जरूरत नहीं, बन माने साधु संग, कलयुग में विशेष करके हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव। आप धनी मानी है, आप अमेरिका के बुश हैं या रशिया के पुतिन हैं या कोई हैं, हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम आजाद, या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह या सोनिया, इनका काल कुछ नहीं कर सकेगा ऐसा नहीं। यदि दुखी हैं तो वही लोग सबसे दुखी हैं। ऐसी सभाओं में बिना गार्ड के, पुलिस के वो लोग आ सकते हैं, अपने मन की पसंद चीज को खा भी नहीं सकते हैं, 10 डॉक्टर परीक्षा करेंगे, सब समय जीवन का भय उनको। इसलिए आप लोगों को मौका है, सुजोग है, मनुष्य देह को पाया है, थोड़ा सा भी चलते फिरते उड़ते बैठते फिसलते हुए भी उनका नाम ले लेंगे, आपका कल्याण। अभी हम उसके संबंध में बतलाएंगे। अभी उषा देवी जाओ निकट में और एक ऐसा कीर्तन करो जो सभी लोग कर सके। खड़ी खड़ी होकर के कर सकती है। देखो तो सब लोग देखेंगे।
रस के रसिया श्याम श्याम रस हमें
अब आप लोग श्रीमान भक्ति वेदांत महाराज जी कुछ हरी कथा बोलेंगे शाम कर या तुम्हारे भाई इंटरेस्टिंग है
राजेश अलीगढ़ से पेश थे राजेश पेश है क्या बोलना
ये दे दी ये दे दो
अगर माइक भी चलती है क्या बोलना
क्या बोलता हाँ हाँ वो तो पेड़ की एकदम ऊपर वाला है पेड़ पर चढ़ेंगे कैसे ये पहले होना चाहिए बोलो 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 जैसा दंड रख दंड दे भक्त संदेश भी लाला ले जाना संदेश भी खींच लेना
राधिका वास्तव से संबंध इसी को दर्शाए गए। संसार में वास्तव वस्तु है तो कौन है? हरि ओम तत्सत् भगवान श्री हरि और जीवात्मा। जीवात्मा कभी मरती नहीं है, अजर अमर सनातन है। जीवात्मा का भगवान के साथ में संबंध है। वह संबंध कर्म से नहीं, ज्ञान से भी नहीं, एकमात्र भक्ति से। लोग संसार में कहते हैं कर्म ही देवता, कर्म ही पूजा है और कर्म ही हमारा ईश्वर है। हम कर्म के बिना जी नहीं सकते, कर्म ही हमें सब कुछ कराता है और देता है। पर श्री व्यास जी ने कहा कर्म ही जीवन का सार नहीं है, कर्म के द्वारा हम जीवित नहीं रह सकते। कर्मावलंब का केचित केचित ज्ञानावलंब का लोग कर्म का अवलंबन करते हैं। अभी कोई बात रसानंद प्रभु ने आपके सामने सुनाया, कर्म के द्वारा आज तक कोई सुखी हुआ है? कोई नहीं, और ना ही कोई हो सकता है। इसी प्रकार जहां पर शुष्क ज्ञान सुअहम करते हैं, बहुत से लोग शिव अहम करते हैं, ऐसे अहंकार अभिमान में डूबे हुए। इस स्वाभिमान के द्वारा कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ना ही जीवन में कोई शांति मिलती है और ना ही कोई सुख है। इसलिए श्री व्यास जी कहते हैं कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये सभी कुछ जहर का घड़ा है, विष का घड़ा। इसमें जाकर जीवन को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। इसलिए श्रीमद भागवत जी ने सबसे संसार में सबसे बड़ा चीज क्या है? महान चीज प्रेम को ही महान किया है। इस प्रेम का संदेश दिखाया जो कि प्रेम का स्वरूप भक्ति है। उन भक्ति के स्वरूप जिस भक्ति के द्वारा परब्रह्म भगवान भी वशीभूत हो जाते हैं। भगवान प्रेम के सामने एक बालक बनकर के आ गए, एक सखा बनकर के, एक प्रियतम बनकर के भक्तों के सामने आ गए। आज इस संसार में यही उदाहरण है जहां भक्तों का हृदय निष्काम निस्वार्थ हुआ है और निस्वार्थ प्रेम भगवान के प्रति उमड़ा है। भगवान श्री हरि वहीं पर आ गए। किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी जाति में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक मुस्लिम कवि भी तो उन्होंने भी तो वर्णन किया है अहीर वानो तनया दत्त मन जलपते सांप्रतम गृह अहीर वानो तनया हित मानसाय दत्त मन जलपते सांप्रतम गृह। हे जगपति, हे श्री कृष्ण, आपको परिपूर्ण काम है और सभी कुछ आपके पास है। इसी प्रकार कोई कमी तो है नहीं, मैं क्या दूं आपको जिससे आपका अभाव कुछ पूरा हो जाए? आप तो परिपूर्ण है। हाँ, मैंने विचार किया, मैंने देखा कि ब्रज की गोपियों ने आपके चित्त को, आपके मन को चला लिया है, इसलिए आपके पास सभी कुछ होते हुए मन का अभाव है। अतः मैं अपना मन आपके चरणों में समर्पण करता हूं, कृपया आप ग्रहण करें। आज भी ब्रज में दस खान की समाधि देखी जाती है। चाहे किसी भी भाषा भाषी और किसी भी जाति के, किसी भी प्रांत के, किसी भी देश के भक्त के, धर्म से भगवान के चरणों में समर्पित कर पाए तब वही व्यक्ति जगत में महान बन जाता है। इसलिए भक्तों का चरित्र लिखा है जिसमें अभी अभी आपने सुना है ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, बड़े बड़े राजा महाराज जिनके पास अपार विषय संपत्ति है, सब कुछ ठुकरा करके भगवान के चरणों में मन प्राण हृदय समर्पित किया। इसलिए विश्व जगत में अजर अमर स्नान और जितने भी लड़ने खेलने वाले मरने काटने वाले सब मन काट कर गए, सब गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं केवल नाम मात्र रह गया कि नाम सुना जाता है बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, समाज के कोई उपकारी बंधु नहीं बने, संसार के लिए घातक बने। भगवान कृष्ण देव की पांडवों को यानी अर्जुन और भीम को लेकर के ब्राह्मण देश में गए, मालव देश में जरासंध के पास में दान दे रहे थे। जब शिव जी की पूजा करता था वहां मृत्यु ने कवच जप करता था और 86 राजाओं को बंदी बना लिया और 14 राजा मिल जाए तो शिव जी के सामने बलि चढ़ा करके अमरत्व सिद्ध करेंगे। भगवान कृष्ण ने दान मांग बोले कि रणम दे हमें युद्ध चाहिए, तू जरासंध के पास अब युद्ध मांग रहे अब कौन है बच्चे, बोले मैं कृष्ण हूं ये भीम से ये अर्जुन हूं। बोले आप युद्ध किस लिए मांग रहे क्यों मांग रहे, इसलिए कि हे जरासंध हे महाराज आप जिस पद पर चलते हुए अधर्म के पद पर चल करके धर्म की ध्वजा उड़ा रहे, इसी के प्रतिवाद में इस अन्याय का जवाब देने के लिए आया। ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई कर्तव्य नहीं है। आज संसार में उपासना होती है, मंदिरों की कमी नहीं और लोगों की कमी नहीं जो मंदिरों में जाते नहीं हो, पर यहां पर तामसिक उपासना होती है, वो उपासना उपासना नहीं। आज विजयादशमी है, कितने कितने देवी मंदिरों में कितनी हत्याएं हो रही है, कितने पशुओं की बलि चढ़ रहा है, इसको कोई उपासना मानी नहीं जाएगी, ये तामसिक उपासना। इसी प्रकार ऐसी उपासना जरासंध सभी को मानता था, कृष्ण को नहीं मानता, इसकी मन को अशुद्ध है। भगवान ने कहा है हे अर्जुन संसार में दो प्रकार के प्राणियों को मैंने बनाया, जितने भी प्राणी है सब दो श्रेणी के, एक देवता दूसरे पशु। विष्णु भक्त स्मृत दैव आसुरस्ता विपरीत जो भगवान का भक्त होता है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है वह देवता होता है और असुर उसके विपरीत है। असुर भी साधना करता है पर उसकी साधना संसार के विनाश के लिए किसी के उपकार के लिए नहीं। संत पुरुष क्या होते हैं जबकि निष्काम निस्वार्थ भाव से भगवान के प्रति अपना मन प्राण हृदय समर्पण किए हैं, महान प्रेम का संदेश जहां उमड़ा है उस महान प्रेम को जगत में मिलाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा है कि निर्मत सरारण सताम धर्म प्रोज्जित कई करो अत्र परमो निर्मत सरारण संसार में जितने प्रकार के धर्म कर्म पूजा पाठ ये सभी कुछ छोड़ो। देखा जाए कितने लोग समर्पण करते हैं। और जो कोई व्यक्ति भगवान के लिए समर्पण करते हैं भगवान कहते हैं उन्होंने सर्वस्व त्याग किया। जे दारादार पुत्र भारत प्राण वित्तम इमं परम हित्वमान शरणं जाता कथम ताम तत्त्वम् सहि। दुर्वासा ऋषि को ब्राह्मण को कहा हे ब्राह्मण अहम भक्त पराधी मैं भक्तों का पराधी मेरे हाथ में चक्र नहीं है मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता मेरे द्वारा संभव नहीं है बेटा मेरे हृदय मैं उनका हृदय हूं जिन्होंने संसार का सारा मोह त्याग किया है पुत्र परिवार बंधु बांधव सबकी आसक्ति सबका मोह छोड़ करके मेरे चरणों में आस लगाया तो मैं उनको कैसे त्याग सकता मैं कदापि त्याग नहीं करता मैं छोड़ नहीं सकता। भगवान कृष्ण बोले हे उद्धव संसार सबसे बड़े कौन है मेरे प्रिय भाव जिन्होंने सर्वस्व त्याग किया निरपेक्ष शांत निर्भय निष्क्रिय ऐसे जो भक्त हैं उनके जीवन में क्या है सर्व सुखमय दिशा सारी दिशाएं उनके लिए सुखमय है। जबकि उद्धव ने यह पूछा कि हे भगवान आप हमें ये बताइए संसार में इतने प्रकार के धर्म तरह तरह के मतवाद तरह तरह के पंथ हैं हम कौन सा अपनाएं और आपने भी बहुत सारी बात कह दी हमारे समझ में नहीं बैठा। भगवान ने कहा सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सर्वप्रथम ब्रह्मा को उपदेश दिया ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र पौत्र नातिपति करके परंपरा में सबको संदेश दिया सनातन धर्म के तब वही संदेशा चलता आया देवताओं में मनुष्यों में गंधर्वों में राक्षसों में असुरों में सभी में चला गया। जो जैसे खान पान के जो जैसे स्वभाव के बने उसी स्वभाव में अपने अपने खान पान में सनातन धर्म को उसी तरह से जोड़ लिया। आज संसार में ये हुआ कोई यश के लिए कोई प्रतिष्ठा के लिए कोई लाभ पूजा के लिए कोई पुरुष कोई पुरुष कोई कहता है दान करो कोई कहता है ध्यान करो कोई कहता है यज्ञ करो कोई कहता है पूजा पाठ करो कोई कहता है देवी की पूजा करो कोई कहता है देवता की पूजा करो। अब किसको माने किसको छोड़े यही तो चक्कर है। तो ये क्या है क्षुद्रानंदा और दुखदता बहुत से धर्म बहुत से संप्रदाय बहुत से अखाड़ा बहुत मन मतांतर निकल गए हैं ये सभी तो सनातन धर्म के रूप है सब एक है बोले नहीं मनुष्यों का स्वभाव अलग अलग है खान पान रहन सहन अलग अलग होने से अपना अपना जो मतवाद निकाले हैं ये सभी थोड़े थोड़े समय में ही आए। आज जैसे मुस्लिम धर्म को देखें तो 1500 वर्ष से ही हुआ है क्रिश्चियन धर्म 2000 वर्ष से ही हुआ है इससे आगे तो नहीं था। सनातन धर्म जिसका कोई आदि अंत नहीं है सृष्टि के प्रारंभ से ही आया है इसलिए सनातन धर्म में भगवान कृष्ण कहते हैं ये जितने प्रकार के धर्म हैं थोड़े थोड़े आनंद देने वाले और परिणाम में दुखदायी इससे जीवन में कदापि शांति नहीं मिलती। वास्तविक क्या है जो सब कुछ देखकर एकमात्र निष्काम भाव से मेरी भक्ति करते हैं ऐसे भक्त जगत में महान है उनके जीवन में सर्व सुखमय दिशा समस्त दिशाएं सुखमय आ संत चित्र कला पर वो लेकर के आए, चक्रधारी भर हुआ तो दूध भी नहीं मिल पाया। मैं तो चाह रहा है कि मैं आपका पुत्र हूँ, जन्म जन्म में मैं आपका बालक होकर के आया हूँ, मुझको आप लाड प्यार करें। बोले चक्रधारी को कौन दूध पिलाएगा, चक्र कम से कम उतारे तब तो दूध मिलेगा। जब भगवान ने देखा चक्र धारण करके मुझको प्रेम नहीं मिलेगा, तब उन्होंने चक्र छोड़ करके छोड़ पागल बन गए। देखते देखते पागल बन गए, देवती मैया ने उसको दूध पिला दिया और पिला करके ले गया। जबकि ब्रज में बाल कृष्ण के रूप में वहां पर यशोदा मैया के नंद बाबा के वास्तव प्रेम में छोटे बालक बने और बालक बनकर वहां थे। उनके प्रेम को आस्वादन किया, जिस प्रेम के सामने उन्होंने विराट रूप दिखाया, कितने कितने बार ब्रह्मांड दिखला दिए, पर यशोदा मैया ने तो कभी मानी नहीं। कहीं भूत लग गया, नजर लग गया, नजर उतारना पड़ेगा। प्रेम के सामने पर ब्रह्म होकर के भी, भगवान होकर के भी छोटे बालक बने। क्यों? निष्काम निस्वार्थ जिस प्रेम में न कोई ऐश्वर्य है न प्रभुता है और सारी सीमाओं को तोड़ करके उस महान प्रेम के सामने भगवान श्री हरि गोधाम से अवतरित हुए और यहाँ आए, यहाँ बालक बनकर के प्रेम का आस्वादन करते। 3 वर्ष 4 महीने तक ब्रज गोकुल में बाल मिलाए। इसके पश्चात कृष्ण बलराम दोनों ब्रज में वृंदावन में और जितने भी बाल उपगण है सभी में बच्चों को चलाते हुए सखाओं के साथ खेल कूद करते हुए पौगन उम्र में उन्होंने लीलाएं की। इस प्रकार कोई शोर लीला में ब्रज गोपियों के साथ में कृष्ण की अपार लीलाएं हुई और उन लीलाओं में उन्होंने प्रेम का आस्वादन ब्रजभूमियों के चरण अनुराग को उन्होंने ग्रहण किया। जहां मां यशोदा ने कृष्ण कन्हैया को बांधा, तब से गोपियों का कृष्ण के प्रति स्नेह प्रीति प्रेम उमड़ा। कृष्ण कन्हैया को भूख लगता है और मां यशोदा उनको मांस देती है, मक्खन चुरा लेता है, कहीं खा लेता है, कुछ करता है, इसलिए मैया ने बांधा है। आज से हम लोग खिलाया जिससे उनको किसी तरह से भूख नहीं लगेगा, लड़की मक्खन चुराएगा। तब से गोपियां कृष्ण से प्यार कर रहे थे। जबकि कृष्ण का उम्र 3 वर्ष 4 महीने ब्रज की गोपियां राधा जी क्या करती, कुछ न कुछ छिपा करके ले जाती, बन में ले जाकर के कृष्ण को खिलाता है, बन के फल फूल संग्रह करके राधा जी अपने हाथों से परोस करके खिलाती, बन के फूलों का चयन करके माला धूल करके कृष्ण को पहनाती है। स्नान करते समय अंधेरा धुल जाता है, यशोदा मैया ने जो किया था राधा जी अपने हाथों से अंधेरा करती है। तो इस प्रकार कृष्ण को सब प्रकार से सेवा करती हुई जो प्यार करती है सेवा करती है जिन गोपियों के प्रेम में कोई किरदार कोई भी कामना नहीं कोई भी स्वार्थ नहीं। छोटी छोटी गोपियां जब से खेलना कूदना सीखा है तब से कृष्ण के साथ में खेलती है नाचती है गाती है, कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़ता चला गया और कृष्ण के मोहन वंशी धीरे धीरे उनके चित्त को चुराते चले गए। इसी प्रकार गोपियों का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता चला। राधा जी के उस महान भाव को देख करके कृष्ण स्वयं दास हो जाए, जिनके महाभाव रस को आस्वादन करने के लिए उनकी रासलीला जैसी लीला हुई थी। समस्त ब्रज गोपियां जो कोई देवता है और बड़े बड़े ऋषि हैं वे सभी और वेद की ऋचाएं मंत्र समुदाय वे सब ब्रज गोपी बनकर के आए। उनके अंदर में जो अनुराग है कृष्ण प्राप्ति की लालसा है, कृष्ण से मिलना चाहती है, परंतु राधा जी के महाभाव रस के द्वारा जब तक अभिषिक्त नहीं होगा तब तक वे कैसे कृष्ण उनकी अभिनता स्वीकार करेंगे, कृष्ण कैसे उनका प्रेम आस्वादन करेंगे। समास तत्व जो कि 11 वर्ष तक ब्रज की लीलाएं थी, जिसमें प्रेम स्नेह मान प्रणय आदि करके ब्रज गोपियों के विचित्र प्रकार के भावों की चमत्कारिता, इसके आस्वादन कहने के लिए कृष्ण ने लीलाएं रची हैं। राधे तुम्हारे लागी बरज वास, तुम बिना मोर कहाँ रास। जब मान करके उठ करके चली जाती हैं, उस समय कृष्ण स्वयं कहते हैं, राधे तुम्हारे लिए ये बरज ब्रजवास है, तुम्हारे लिए ये साथ लीला भी हो। यदि तुम चले जाओ तो मैं किसके साथ में लीला करूं, कौन सा रस का आस्वादन करूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जहां पे सुहानंद ने राधा जी के वहां प्रेम का आस्वादन करने के लिए रसो वैसे भगवान श्री हरि जो वेदांत के प्रतिपाद्य रसो वैसे है, वे गुरु धाम से यहाँ अवतरित किए और यहाँ आकर के रस का उस प्रेम का आस्वादन करने लगे। इसके पश्चात जबकि अक्रूर जी ब्रज में पहुंचे, नंद बाबा से कहा, कृष्ण बलराम से देवकी वसुदेव के कष्ट की बातें सुनाई कि 20 बरस तक जेल में पड़े हुए इतना कष्ट भोग रहे हैं और कितना दिन सहने नहीं करा है, मना कर रहे। इस बात को सुनकर कृष्ण बलराम बोले कि हम निश्चित रूप में प्रतिज्ञा करते हैं, कल हम चलेंगे, परसों हम कंसों को मारेंगे और देवकी वसुदेव को मुक्त करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है निश्चय। वही समस्त ब्रजवासियों को रुला, ब्रज गोपियां जहां विरह में अधीर हो करके रो रही हैं, रथ के चारों ओर घेर लिया मूर्छित हो गई और उस समय अहो विधात स्तवन कचित दया संयुक्त मैत्रा प्रणय न दे। अरे विधात, तुमने किंचित मात्र भी दया नहीं, मैत्री भाव से जोड़ करके आज तुमने तोड़ लिया तुम्हारी चेष्टा से पालन। आज तो मथुरा भूमि में सूर्य उजाला है और वहां पर सूर्योदय होगा, पर ब्रजभूमि विरह में अंधक में डूबती चली गई। इसी प्रकार कृष्ण बलराम जब मथुरा में आए, उन्होंने रंगमंच में अखाड़े गई चादर मुष्टिक को संहार किया। इसके पश्चात कृष्ण की चोटी बगल कंस की चोटी बगल करके उसको धराशायी किया, फिर देवकी वसुदेव को जेल खाने से छुड़ाए, महाराज उग्रसेन को राज सिंहासन में बैठाए। इसके पश्चात देवकी वसुदेव ने कृष्ण बलराम को बड़े जल्दी से जल्दी उपनयन संस्कार कराकर उज्जैन में भेज दिया गुरु शांतिपुरि के। वहां कुछ दिन तक वहां पढ़ते लिखते हुए घूम के आएंगे तो ब्रजभूमि को ब्रजवासियों को भूल जाएंगे। परिस्थिति कृष्ण जन्म की 3 महीने तक 64 दिन में 64 विद्या 64 कलाओं को सीख करके गुरु दक्षिणा देकर जब लौट करके आए मथुरापुरी में, तब 3 महीना बीत चुका। एक दिन यमुना की कलकल धारा को देखते हुए कृष्ण के मन में इतनी अधीरता आ गई, उस समय अपने को संभाल नहीं सके, बड़े विकल होकर रोने लगे। इतने में उद्धव जी उनके पास जब पहुंचे, उस समय रोते हुए कृष्ण ने उद्धव का हाथ पकड़ करके कहा, गच्छोद्धव ब्रजमुसुम पितृणाम प्रतिमाम, हे उद्धव हे सुम, एक बार तुम ब्रजभूमि में जाओ, ब्रजभूमि की बातों का स्मरण करके मेरा धैर्य खो गया, अब मैं कैसे सुना मेरी माता। नंद बाबा यशोदा मैया बड़ी विकल होकर रो रहे, मेरी प्राण बदलवा ब्रज गोपिया प्राणान धारयन्ति कथं, बड़े कष्ट से प्राण को धारण करती है, वे जी नहीं सकती, केवल मैंने शपथ दिलाया राधे हम निश्चित आएंगे, मैंने बार बार शपथ दिलाया कि आज मैं जा रहा हूं कब कंस को मार करके, परसों अवश्य अवश्य लौट के आऊंगा, यह मैंने वचन दिया था। परंतु मैं विवश हूँ, मैं तो जा नहीं सका और न जा पा रहा हूँ, कैसे भी तुम्हें जाना। उनको कुछ संदेशा देना है, वे किसी भी तरह से जीवन धारण नहीं कर सकते, केवल मेरे जीवन की आने मेरे पद की आस लगा करके जी रही है, अन्यथा अब सर छोड़कर चल जाती। इस प्रकार कृष्ण बैन एक एक बात को याद करते हैं, सुनाते हैं और बोलते हैं। उद्धव को अपने वस्त्र पहनाए, सोने के रथ में बैठाए और बार बार कृष्ण उद्धव को कहते हैं, उद्धव उन ब्रजवासियों ब्रज जनों मेरी प्राण मल्लवा ब्रज गोपियों संदेश देना, ये संदेश देना, इन बातों को कभी मान नहीं कर, फिर भी तुम बता दो, ऐसे ऐसे बार बार समझाते हुए भी। जबकि उद्धव जी ब्रज में गए, ब्रज की स्थिति क्या थी, तुमसे रहती मतलब ब्रज कुल आप तू कुल बगल कारण का जब से कृष्ण कन्हैया ब्रज से मथुरा को गए, यशोदा मैया मोह के ऊपर कपड़ा ढक ली, जब तक हम कृष्ण को नहीं देखते तब तक थे संसार का कोई उचित नहीं थे। दीवार पर रोती थी, कितने लोग सांत्वना देने को प्रयास किसी भी तरह से नहीं। नंद बाबा दीवार बोलते थे, एक प्रकार समाधि में वाले बैठे तीन महीना नहीं दिया, किसी ने पानी तक भी नहीं, कोई भोजन भी नहीं। नंद बाबा के घर में चूल्हों में मकड़ी का जाल हो गया, चूल्हा भी जला दिया, घर में झाड़ू तक भी सभी ब्रजवासियों की स्थिति उसी प्रकार थी, वे सभी रो रहे। ब्रज की गोपियां वन के अंदर पड़ी हुई हैं, वहां से लौट ही गई। राधा जी को तो फूलों के सेठ में सुला दिया, गौए सब घासे नहीं खाती, बछड़े भी दूध पीना छोड़ दिया है। दिवारात्र कृष्ण के लिए आंखों से आंसू बहा रहे। इसी प्रकार सखा कृष्ण के विरह में कहीं किसी गंभीर मन के अंदर पड़े हुए दीवार हुए, यहां तक कि ब्रज के फूलों में भौरे भी नहीं है, वे गुंजार नहीं करते, मधुपान भी नहीं करते, कोयल भी और उहू उहू आवाज भी नहीं करते, मयूर मयूरी भी सभी कृष्ण के विरह में रोते। जब कृष्ण ने लीलाएं की, जब उन्होंने बंसी बजाई, तो बंसी धने से ब्रज का ऐसा कोई पत्थर नहीं, ऐसे कोई पहाड़ पर्वत नहीं पिघले नहीं, आज भी अपने पक्ष कृष्ण के चरण चिन्हों से सुशोभित है, जो कि पिघले हुए पत्थर में कृष्ण के चरण चिन्ह विद्यमान है। जहां कृष्ण की वंशी ध्वनि से यमुना की धारा रुक जाती है, पानी खुलने लगता है और वे कमल पुष्पों को उखाड़ करके कृष्ण के चरणों में समर्पण करना चाहते। आज ब्रज की वही दशा कृष्ण के सारी स्थितियों को देखा। नंद बाबा जब उनके पास के आए बैठे, कुछ कृष्ण के बारे में पूछे गए, कुछ पूछ भी नहीं सके, जितना ही बोलने का प्रयास करते उतना ही उनका गला बंद हो जाता है, आंखों की आंसू की झड़ी ने पूछा उद्धव आप बताओ मेरे भैया बसुदेव और देवकी विलुप्त कुशल से है भाग्य से कम समय मथुरा वासियों के लिए कष्ट का समाधान खुला अब तो सभी कुशल से है ना इतना कहते नंद बाबा ने हमारा कन्हैया कैसे इतना कहते ही धैर्य को खो बैठे उस समय उद्धव जी नंद बाबा जी इस प्रकार विरोध में को लगा इतनी आरती ऐसे ऐसी उत्तर था यह देखकर सारी बुद्धि समाप्त हो गई हम क्या बोले नहीं बोले कौन सी भाषा में हम सांत्वना कोई कृष्ण के लिए रोता है तो उनका तो महान भाग्य है महान भाग्य माना जाएगा क्या मैं कहूं कि आप और भी रोए ये तो सांत्वना नहीं और यदि कहूं बाबा आप रोए नहीं हम कैसे कहें ये तो बोला नहीं चाहिए और कौन से बात करने में उन्हें सांत्वना बड़े मुश्किल से सोच विचार के कहा कि बाबा आप तो महान सौभाग्य वाले हैं आपके जैसे सौभाग्यशाली कौन होंगे जो कि कृष्ण परमेश्वर परमात्मा स्वयं भगवान हैं वे आपके पुत्र को करके आए वे दूर नहीं है आपके हृदय में है आपसे कहीं दूर नहीं गए आप दुखी हो उस समय नंद बाबा बड़े मुश्किल से अपने को संभाले बोले उद्धव हमने सोचा है तुम्हारी कुछ बुद्धि सुधरी होगी कृष्ण के साथ में रह करके कुछ चतुर बना होगा परंतु तुम मेरे बालक हो मेरे जैसे एक दुर्भाग्य को तुम सौभाग्यवान कहते हो क्या बोल रहे हो तुम हमारा बालक परमेश्वर परमात्मा भगवान मैंने तो जीवन में कभी सोचा नहीं ना मैंने कभी समझा और ना मैंने कभी माना पहले कभी गंगाचार्य ने भी कहा था कि नारायण समझ गुणे पर तो हमने तो कभी माना नहीं कभी हमने समझा भी नहीं हमने तो अपना बालक समझा और उस बालक को आज पा करके भी हमने खो दिया तो हमारे जैसे दुर्भाग्य पर कौन होगा आज हमारा दुर्भाग्य एक बालक और वो भी हमसे दूर जाए नंद बाबा और रोते बोले कि उद्धव संसार में पिता है तो एकमात्र दशरथ महाराज जिन्होंने एक बार हारा आज तक कृष्ण कहते हुए रोते हुए मेरा शरीर में अभी भी प्राप्त है मैं तो अभी गया प्राप्त देखा तो मेरा दिल पर तो मैं देखता हूं वो बाबा जब मेरे गोदी में बैठता मेरे मुंह से चबाता ही है पान को निकाल करके उठा लेता जब तक यशोदा के गोदी में बैठकर दूध नहीं पीता तब तक उसको चैन नहीं साधती भूख लग जाए तो थोड़ी देर हो गई भूख लग गया तो घर के सारे बर्तन तोड़ डाले कुछ न कुछ उधम मचाते ही रहते आज उस बालक के अभाव में हमें घर का एक एक ईंट भी पत्थर भी हमें जवाब दे रहा है मैं कैसे ऐसा कोई स्थान नहीं ऐसा कोई वृक्ष नहीं ऐसे कोई पहाड़ पर्वत नदी नहीं जहां कृष्ण नहीं गए सब जगह विचरण किया सभी जगह जहां कहीं जाओ वही स्मृति जागृति क्षण भर के लिए तो मैं भूल नहीं पाता मैं कैसे हूं कैसे अपने पुत्र धारण करूं उस समय नंद बाबा कृष्ण के बाल्य नंद बाबा तो बोलते रहे। उद्धव जी ने नंद बाबा को जसोदा मैया के अनुरोध प्रणाम किया। सुबह सुबह
सारी रात बीत गई।
सुबह को अब कृष्ण कुंड में स्नान किया। मंत्र जप करते हुए वहां से रथ लेकर के चले उद्धव किनारे में, जहां पर ब्रज गोपियां कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर पड़ी हुई, जहां गोपियों ने राधा जी को फूलों के सेठ में सुला दिया और शरीर कैसे छीन मरा कि क्रोध के साथ में मिलकर मानो शरीर भी एक बराबर। कभी कभी श्वास चलता है या कभी कभी रुक जाता है, गोपियां विरह में रोती रहती। जबकि उस रथ को सोने के रथ को देखा, देख करके गोपियां बोली, अरे ये कौन है, क्या कृष्ण है क्या, देखने में कृष्ण जैसे, पर ये तो कृष्ण नहीं, ये तो कृष्ण के संदेश बाहर कोई दूत होगा, जरूर कोई कृष्ण का संदेश आ कोई समाचार लेकर के आया। इस समय गोपियां आई, आकर के बोली, प्रेम उद्धव यहां पर तुम कैसे आए हो, क्या तुम रास्ता भूल गए हो, अब तो कृष्ण तो नहीं आए, तुम्हें भेज दिया है पिता माता के पास में जाओ, वहां उनको सांत्वना देना, बिल खुश होंगे तुम्हें देखकर, उनको आने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, न आने को कोई जरूरत समझी, क्यों धन्यवाद है इतने महान त्याग के लिए। कोई साधु सन्यासी भी होता है तो भी अपने पुत्र परिवार को भूलते नहीं और उनको धन्यवाद है। क्षण भर में उन्होंने सारा नाता रिश्ता तोड़ लिया और सबको भूल गए। तो ऐसे ही होता है उद्धव, अब क्या होता है शिक्षा में यही प्रेम की रीति रिवाज है, एक सोपान है प्रेम, दूसरा है निपाधिक। जहां कोई हेतु होता है, कोई कारण होता है, कोई मतलब होता है, अपना स्वार्थ होता है, वहां पर प्रेम दिखता है अपने अपने मतलब साधने के लिए। परंतु उद्धव हम लोग तो बचपन से कृष्ण को प्यार करते आए हैं, हमने तो कृष्ण से कभी रोटी कपड़ा मांगा नहीं, हमने तो उनसे कभी कोई चीज मांगा नहीं, अपना जो कुछ बना जो कुछ हुआ उनके साथ में और उनको प्रतिविधान उनके खुशहाली को हमने देखा, उनकी सेवा की। परंतु आज हमने कौन संतोष किया जो कृष्ण हमें छोड़कर चले गए, उस समय गोपियां कृष्ण के विरह में अधिक होकर रोती थी, कोई शोर मन लगी सारी लीलाओं को कहती हुई गाने लगी और रो गए। इस तरह से गोपियां अपने को धैर्यवान कर उद्धव को लेकर के राधा जी के पास में पहुंचे, कहा कि चलो हमारे स्वामी जी को राधा जी को तो एक बार देख लो क्या स्थिति है। जब आए उस समय उद्धव जी राधा जी की उस उन्माद की स्थिति को देखा जो विरह उन्माद में उन्मादनी होकर के पड़ी हुई है, दिव्य उन्माद की स्थिति में अंतर दशा में जिनको कोई बाह्य आवेश होश भी नहीं श्वास भी नहीं चलता, रुई लगा करके देखते देखती। उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम किया, वहां जाकर के कुछ ही निकट में बैठे। उस समय
दिव्यवान हुए राधा जी, कोई काले भ्रमर उड़ के आए, गुनगुन करके आवाज करने लगे। उस भ्रमर वास्तव में सचमुच तो आया है, कृष्ण भ्रमर काले भ्रमर बन करके आए राधा जी के उस गुणगान को सुनने के। और राधा जी अंतर दशा में आंखें बुनी हुई थी परमात्मा में, उस समय एक एक शब्दों को कहती है तो क्या कहती है वो जाने, कोई दूसरों को समझना भी बड़ा कठिन, जो कि दिव्यनुवाद के महाभाव का वर्णन हुआ है। मधुपति तो बंधु भगवान प्रसाद सपत्र कुछ मिलुली तो वाला गुप्तुम शत्रु बहुत मधुपति मारिणी नाम सत प्रसाद जद सदस्य विराम दूत स्तभित्री। हे मधु हे भ्रमर, वे जैसे कपट है तुम भी वैसे उस कपट के बंधु हो, जैसे राजा वैसे दूत, दूत से ही राजा का परिचय मिलता है, तो तुम से ही तुम्हारे राजा का तुम्हारे प्रभु का परिचय मिलता है। तुम आया तो ऐसे क्यों आया, अपने मोच पर ये कुमकुम लगा करके क्यों आया, तुम्हें भी होश नहीं है, तुम भी मतवाले हो और तुम्हारा प्रभु भी मतवाला है। उनकी जैसी हंसी होती है जज सभा में और सभी लोग हंसी मजाक उड़ाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी भी हंसी है और तुम्हारी बुद्धि कैसे सुधरेगी बोलो, क्योंकि तुम तो भ्रमर हो ना, तुम्हारे छह पैर है, दो पैर वाले मनुष्य होते हैं तो मनुष्यों की बुद्धि होती है, बड़े चला चले होते हैं, परंतु तुम तो मनुष्यों में गिनती में नहीं हो। और चार पैर वाले पशु हैं, उन्हें जगवार कहा जाता है, तो उन पशुओं में भी नहीं हो, उनसे भी गया बिता हुआ तुम छह पैर वाले, तो तुम्हारे बुद्धि कहां से होगी, कैसे मानवीय को मनाना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे आना चाहिए, तुम्हें ये सब पता नहीं, तुमने तो सिखा ही नहीं और तुम्हें पता नहीं है। मानव भौरा बार बार कुंडल बिना करता हुआ बनाता है, फिर स्वामी जी आप मान जाए मेरे मूछों में तो ये स्वामी लाल रंग है, मैं कोई कुकुम लगा करके तो आया ही नहीं, न मैं किसी स्त्री के पास में गया और न किसी के माला में बैठा, फिर भी आप ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा नहीं, वास्तविक बात है कि आप तो मान ले एक बार कृष्ण की कथा तो सुन ले। बोले अरे बार बार कृष्ण की कथा, अरे हमने तो सुन लिया, ये सारी पुरानी हो गई, वो भली भली लक्ष्मी जी बड़ी सीधी साधी है, वो बार बार सुनना चाहती है, जितना ठगती है बार बार वही जाती है, तो इसलिए वो ठग है और वो सुन है, मैं नहीं सुनती, मैंने बहुत सुन लिया, अब तो क्या ऐसे बार बार प्रत्याख्यान करती है और वो भौरा बार बार उड़ उड़ करके आता है। उस समय तो मानो उद्धव ऐसे बात कर रहे हैं कि हे स्वामी जी, जब वे काले हैं और जो सब समय जो आप बार बार उनकी बातें कर रही हैं और बड़े ही कटखट हैं, आप लोगों को छोड़ दिया है और उनके सारे दोष हैं, तो ऐसे दोषी व्यक्ति की बातें क्यों करती हो, उनको छोड़ दो, उनको भूल जाओ, उनकी बात क्यों करती हो, उनकी बातें नहीं करती है। राधा जी कहती है क्या भूल नहीं पाती, मृगयुरीव गोविंदम विपदे लुप्त धर्मा, केवल एक जन्म के नहीं जन्म जन्म के काले और कृष्ण कन्हैया का तो कोई दोष नहीं, दोष है तो उस काले का है, रावण अवतार में भी वैसे और वामन अवतार में भी वैसे किया, बलि महाराज जी को छल लिया, राम अवतार में भी बड़े साधु संन्यासी बन कर के गए पर वन में जाना है तो स्त्री का अपहरण करके क्यों गए, और गए तो सही सुपुत्र किसी के पास में तो गई नहीं, रामचंद्र जी के पास में पहुंचे और वो भी सुंदरी में धारण करके, यदि उसको ग्रहण नहीं करना था तो नाक का काट करके उसके अंग को भी रूप क्यों करना था, ऐसे करके उसको अपना लिया ना, तो ऐसे किया, ऐसे पागल राजबाली को भी मार डाला और तो आप छोड़ दे उनकी बातें मत कहने। बोले कि तू तथा क्या करो संसार में, जब कृष्ण छोड़ के चले गए हम जिए कैसे, जिने का और कोई उपाय नहीं, केवल उन्हीं का नाम है, उनकी कथा है, उन्हीं कथाओं को उपाय पर ग्रहण करके उनके नामों को लेकर के जी गई, नहीं तो प्राण रखे तभी उड़ जाता है। बार बार विवाह में उनका नाम लौट लौट करके आ जाता है, घूम फिर करके आता है, और उन्हीं के नाम से जी रही हूँ। अन्यथा जब राधा जी विरह में मूर्छित हो जाती है, गोपियां सब रोने लगती है, अब तो श्वास बंद हो गया, चल नहीं रहा है, राधा जी हमें छोड़कर चली गई। उस समय गोपियां कृष्ण नाम सुनाती है, कीर्तन करने लगती है, गाती है, तब राधा जी को धीरे धीरे होश आता है, लौट के आती है। ऐसे राधा जी तो ऐसे राधा जी जो कि विरह में अधीर होकर के पूछती है, अच्छा उद्धव जी बताओ क्या तुम्हारे प्रभु मथुरापुरी में है, आज पुत्र क्या मथुरापुरी में है, यदि होंगे तो अवश्य लौट के आए, यदि कहीं दूर चले गए हो तो कभी लौटने की संभावना है, क्या कभी ब्रजजनों का स्मरण करते अपने माँ बाप के लिए याद करते हैं, अपने सखाओं के लिए कभी उनको स्मरण होता है, जिन गायों को इतना चराते थे पालन करते थे, क्या उन गायों के लिए कभी उनके मन में बातें आती है, जिन पौधों को लगाए हैं कभी उनके लिए स्मरण करते हैं, क्या इन बिना दासियों के लिए उनके मन में स्मरण होता है, जब मथुरा की स्त्रियां सेवा करती है कभी ऐसे भी तो कहा करते होंगे कि गोपियां बचपन में खूब सेवा करने को प्रयास करती थी, पर गांव की गवारी लड़कियां भी क्या जानती इतनी सेवा नहीं कर पाती थी, पर प्रयास तो करती थी, कभी ऐसा भी होगा सारी दुनिया में सर संसार में घूम फिर करके जा गोपियों की जैसी सेवा कोई करने कहीं नहीं मिलेगी, फिर कभी लौट के आएंगे भुजंगदारो, क्या इन दीनादासी के मस्तक पर अपने भुज जुगल अर्पण करेंगे और प्रदान करेंगे। हे मथुरा कदा लोक हृदय तदा लोक का यदि आप वृंदावन नाथ होते तो अवश्य लौट के आते, आप तो मथुरा के नाथ होते, और मैं कैसे कहूं कौन सा अधिकार, कोई अधिकार नहीं था, कुछ भी नहीं, अब मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई, अब मैं क्या करूं, इस प्रकार विकल हो जाती है जहां मूर्छित हो जाती, ऐसी स्थिति है जहां उद्धव जी देख देख के बार बार प्रणाम करते, ये ब्रज के भाव है, इसलिए आज मैं इन्हें कथा के साथ में अपना वक्त में नहीं रखता, बहुत सारी कथाएं हैं, अभी आज हम सभी लोग श्री गुरु जी के मुखारविंद से सुनेंगे, इसलिए मैं यही क्षमा चाहता हूँ।
कृष्णदास मन रो लागे
जय जय श्री राम।
गोपियों की क्या कृष्ण के विरह में अवस्था है इसका वर्णन है।
Thank you.
समय शायद हो गया है, बहुत देर से लोग बैठे हैं, आप उनका 10-15 मिनट ले लूंगा। बहुत ही सुंदर सनातन धर्म के संबंध में श्रीमान शिव महाराज जी ने बतलाया, गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है यही हमारा सनातन धर्म है। हम लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाते। सनातन धर्म कहते हैं किसे? सनातन जो वस्तु है वो दो है, एक कृष्ण ही सनातन पुरुष है, जिनका जन्म मरण ये कुछ नहीं है। अहो भाग्यम गोप प्रजौ कृषाम जनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म कृष्णा। कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म है, वेद उपनिषद शास्त्र रामायण पुराण सभी का है। राम नृसिंह इत्यादि कृष्ण ही राम नृसिंह हो करके आए हैं, इनको कला अंश कहा जाता है। और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो ये सनातन परब्रह्म है भगवान श्री कृष्ण। और जीव जितने हैं हम लोगों के अंदर में आत्मा, वो अजर अमर नित्य शाश्वत सनातन है। हमारा शरीर मैं नहीं हूं, इसके लिए बुलाया है समझने के लिए, इसलिए इन लोगों ने हम लोगों को बुलाया है। समझिए, ये तो हाड़ मांस रक्त पैखाना के पेशाब की एक थैली है, इसको काट करके ऑपरेशन करके देखो भीतर में क्या है, आत्मा परमात्मा दिखेगा? जब वो दिखेगा तो ऊपर भी दिखेगा, बाहर भी दिखेगा, भीतर भी दिखेगा। इसलिए इसके अंदर में जो जीवात्माएं हैं वो एक सनातन है, और कृष्ण परब्रह्म सनातन है। दो सनातन जीवों के बीच में जो संबंध होता है वो सनातन होता है। हमारा शरीर आज है कल नहीं है, अधिक से अधिक 100 वर्ष, इसलिए सनातन नहीं है। इसलिए पति अधिक से अधिक 100 वर्ष, 150 वर्ष मान लो, इसके बाद में न रहे पति न रही पत्नी। दूसरे जन्म में पति और पत्नी होकर के आएंगे, कोई गारंटी है? इसकी भी गारंटी। इसलिए ये संसार के माता पिता स्त्री पुत्र परिवार के प्रति जो हमारा संबंध है ये अनित्य है, सनातन नहीं है। इसलिए जीव मात्र का, प्राणी मात्र के जो आत्मा है, आत्मा के साथ में परम परमात्मा जो कृष्ण है उनके साथ जो संबंध है ये है सनातन। यदि कहो जो हमारे सनातन धर्म में तो माता पिता की सेवा, शंकर जी की सेवा, हनुमान जी की सेवा, देवी देवताओं दुर्गा काली, अभी देवी पूजा का जो समय गया, नवरात्र गए, ये तो हम लोग हिंदू सनातन धर्मावलंबी सभी करते हैं। कहिए ये सनातन धर्म नहीं है, किसी भी शास्त्र में इसे सनातन धर्म नहीं, इसको समझने की चेष्टा। रावण शंकर जी की पूजा करता था या नहीं? तो यदि पूजा करता था तो वो सनातन धर्मावलंबी था। उसको भगवान रामचंद्र जी ने मारा क्यों मारा? जो सनातन धर्म वाले में ये शंकर जी की पूजा करता है, अपने शिर को काट करके हवन कर दिया, ओम नमः शिवाय, तो सनातन धर्म वाले में ही है।
सनातन धर्मावलंबी है उसको भगवान क्यों मरेंगे? किसी भी आज तक सनातन धर्मावलंबी भगवान के प्रति प्रेम करने वाले को भगवान राम कृष्ण नृसिंह कल्कि बामन किसी ने मारा? नहीं मारा। तो ये सनातन धर्मावलंबी हो करके भगवान राम की सीता को चुरा लाया है, ये कौन सा सनातन धर्म है? कौन है? रावण दुर्गा जी की भी पूजा करता था, लंकिनी वहां की दुर्गा देवी थी उनकी भी पूजा, हनुमान जी ने एक मुष्टिका प्रहार किया वहीं से भाग, और रावण के वध का समय आ गया। कंस शंकर जी की पूजा करता था और कृष्ण ने भगवान ने उसको क्यों मारा, क्या दोष किया? वो सब समय तो नमः शिवाय शिवो हम करता था। ये सनातन धर्म है? नहीं, ये सनातन धर्म है। एक कृष्ण की पूजा करने से तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, सब जगत तुष्ट। इसलिए भक्ति किसे कहते हैं ये समझना चाहिए, और यही भक्ति सनातन धर्म है। मैं संक्षेप में बताता हूं कि सब जाने के लिए उत्सुक है, 3:30 से ये लोग हैं, कितना धैर्य रखें। कल का दिन है, कल तो नगर प्रोसेशन निकलेगा, सभी लोग आएंगे, थोड़ी बहुत हरी कथा कुछ चर्चा करेंगे, 4-5 दिन का समय रखिए जिसमें सनातन धर्म का हम लोग अच्छी तरह से विश्लेषण कर सकें। आज से 5,000 वर्ष पहले सब ऋषि लोग एकत्रित हुए नैमिषारण्य में और सुत गोस्वामी से पूछा, भयानक कलयुग आ रहा, पुरुष लोग अपने धर्म को छोड़ देंगे, स्त्रियां भी अपने धर्म को छोड़ देंगे, ऊपर से जो साधु संत बने हैं वे लोग भी अपना अपना धर्म छोड़ देंगे, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों में रहेंगे, जो साधारण जनता को जो सुख नहीं है वो बड़े बड़े सन्यासी लोग भोग करेंगे। आप सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं, समस्त शास्त्र को जानते हैं, वेद विद्या में पारंगत हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बलदेव जी की आप पर विशेष कृपा है, इसलिए जो सबके लिए मंगलकारी हो, जो सबका कल्याण हो, आप कुछ अपनी मनीषी से बुद्धि से विचार कर जो सार है उसे बतलाइए, जिससे कि हमारी आत्मा प्रसन्न हो। मैं प्रसन्न हूं शरीर ये नहीं पूछा, क्या पूछा अच्छी तरह से समझिए, हमारी आत्मा लोगों की आत्माएं कैसे प्रसन्न हो। मुझे तभी प्रसन्नता होती है शराब पी ले और खूब मत हो जाए तो इसमें आनंद होता है, हमें तो संसार में फंसने में आनंद होता है नहीं। इसलिए आप बुद्धि से विचार करें और बतलाइए जी हमारा आत्मा का कल्याण कैसे हो, आत्मा कैसे सुख प्रसन्न रहे, तो उसके उत्तर में बड़े प्रसन्न हुए और कृष्ण लीलाओं का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, सवई पुंसा परो धर्मो जतो भक्ति रधो खजे अह तुक्य प्रतिकता ज्यात्मा संपुषी। मनुष्य मात्र के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए, पर्वतों में, वृक्षों में, नदियों में, जहां भी आत्माएं हैं, जिस रूप में, जिस योनि में हैं, देवलोक में हैं, मनुष्य लोक में हैं, गंधर्व लोक में हैं, गधे कुकर सूकर जिस जीवन में है समस्त प्राणियों के लिए एकमात्र परम धर्म। परम धर्म माने सबसे श्रेष्ठ धर्म। अभी इन्होंने बताया ना मुस्लिम धर्म कितना दिन अभी हुआ, अभी कुछ दिन यही 1300 कितना 1400। ईसाई धर्म 2000, इसके पहले ईसाई धर्म ही था ही नहीं। बौद्ध धर्म अभी भारतवर्ष में अभी निकला, अभी कुछ दिन पहले, करीब करीब 4000 वर्ष। ये नित्य नहीं है। अभी जो कृष्ण प्रेम की जो बात इन्होंने बतलाई, आत्मा का भगवान के प्रति प्रेम, विशेष करके कृष्ण स्वरूप के प्रति प्रेम, जो गोपियों में सर्वश्रेष्ठ रूप में है, और उसमें भी सबसे अधिक श्रीमती राधिका जी में जो प्रेम है कृष्ण के लिए, मिलन में आनंद देखो कितना पागलनी हो जाती है, और ब्रह्म में उन्मादिनी हो जाती है। कृष्ण को कटु कटु बातें सुनाती हैं, धूर्त लंपट चोर कहती हैं उस पर ब्रह्म को, और कृष्ण वो उतर करके कानों से सुनने में आनंदित होता है। ब्रह्मा की तपस्या से नहीं, सौ स्तुति से वो प्रसन्न रहने। इसलिए जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए अधोख जो कृष्ण इंद्रियों से अतीत हैं, तन मन वचन से जो अतीत हैं, उन कृष्ण के प्रति भक्ति हो, अहेतु की भक्ति हो। अहेतु की माने क्या? किसी कारण के लिए नहीं। हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं और चौखट को दबाते हैं, कहते हैं कि हमारा लड़का परीक्षा में पास हो जाएगा तो 1 रुपये का बताशा चढ़ाऊंगा, तो ये हो गया ना भक्ति। इसमें कारण है ना। ध्रुव जी ने तो भगवान का दर्शन पाया, नारायण का साक्षात, और उनको मिला क्या? राज्य मिला 36,000 वर्ष का, किंतु पीछे बड़े अफसोस उनको हुआ। हाय है, मैंने एक कांच का टुकड़ा मांगा और मिल गया मुझे चिंतामणि, और उस चिंतामणि को मैंने फेंक दिया। ये सकाम भक्ति है, भक्ति नहीं। इसलिए बिना किसी कारण के तैल धारावत अविच्छिन्न गति से भगवान में चित्त लगने वाला, ये परम भक्ति है। दूसरे शब्दों में इसको यों कहिए, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माज्ञानावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुत्तमा। जब तन मन वचन, खूब अच्छी तरह से सुनिए, जब तन मन वचन, वचन के अतिरिक्त अति मन की भावनाएं, मन का चिंतन तैव धारावत अविच्छिन्न गति से कृष्ण के लिए सुखदायी हो और कृष्ण की प्रीति के लिए ही हो, कृष्ण के सुख के लिए, अपने लिए नहीं, तब इसे भक्ति कहते हैं। और दो प्रादर्शिक उदाहरण दिए, अन्नाभिलाषिता शून्यम, कृष्ण की प्रीति के अतिरिक्त अपने लिए न हो, अपने किसी लौकिक पारलौकिक सुख के लिए नहीं हो, और उसकी भक्ति ज्ञान कर्म योग तपस्या इत्यादि के द्वारा ढकी न हो। विस्तृत व्याख्या है, मैंने संक्षेप में इसमें सुना। अब विचार करके देखिए, समस्त इंद्रियों के द्वारा, तन वचन और भावना के द्वारा, भावनाओं की चेष्टाओं के द्वारा, सबसे अच्छी तरह से कृष्ण कृष्ण की सेवा की। प्रहलाद ध्रुव जी की तो तपस्या हुई राज्य के लिए, सकाम भक्ति हुए, अन्नाभिलाषिता रही। प्रहलाद महाराज जी ने कुछ भी नहीं लिया, भगवान बोले जैसे तुम हमारे लिए इतना किया, तुम कुछ वर मांगो। तो उन्होंने कहा जे वर मांगने की स्प्रिया हमारी नष्ट हो जाए, मैं बनिया नहीं हूं, फिर भी मांगो तो हमारे पिताजी का मोक्ष हो जाए, सदगति मिल जाए, ये भी हो गया है, तुम और कुछ मांगो। तो जगत के लोग, संसार के लोग आपके विमुख होकर के दुखी हैं, उन सब का दुख लेकर के मैं जन्म जन्मांतर भोग करूं दुख, और जगत के लोगों को उद्धार कर दीजिए। कैसे दया, इनकी भक्ति बहुत निर्मल स्वच्छ है। यदि भक्ति कोई चाहता है तो प्रहलाद महाराज जैसा हो, उनका चरित्र सुने। किंतु नृसिंहदेव जी आए तो उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों से क्या सेवा की, स्तुति के अतिरिक्त और कुछ किया? उनके भगवान सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, उनके भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, थकावट नहीं लगती, इसलिए कोई सेवा नहीं कर सके। उनके प्रभु उनके पिता हैं, पालन करने वाले हैं, इसलिए उनकी कोई सेवा नहीं कर सके। हनुमान जी को देखो कैसे प्रेमी हैं, लंका जला दिया, को कंधे पर लेकर के चलते हैं, सब समय सेवा में अनुरक्त रहते हैं, समस्त इंद्रियों के द्वारा उनकी सेवा करते हैं, प्रेमी भक्त हैं। सेवक हो तो हनुमान जैसा, किंतु हनुमान कोई चीज मिली मीठी खा रहे हो, मीठी लगी बड़ी अच्छी, अपना जूठा राम को दे सकते हैं कि नहीं? नहीं दे सकते। राम को अपने कंधे पर ले लेंगे, किंतु राम के कंधे पर ये बैठ सकते हैं कि नहीं? जहां सीता के साथ में पलंग पर बैठे हो राम, हनुमान जी वहां जाकर के क्या करेंगे? जाएंगे ही नहीं, मर्यादा के अंदर में बधे हुए हैं। इनका प्रेम, पांडवों का प्रेम इसे और बहुत लाखों गुना श्रेष्ठ है। कैसे एक पलंग पर पांडवों के साथ में सोते हैं, कैसे अर्जुन के साथ में पलंग पर सोते हैं? कैसे अर्जुन का पैर अपने छाती पर रख करके और अर्जुन कृष्ण का पैर छाती पर रख करके, जिसको एक तरफ में सुभद्रा और द्रौपदी पंखे चलाती हैं और एक तरफ में अर्जुन के पैर को द्रौपदी और दूसरी रूप और सब सहलाती। कैसा प्रेम, अपनी बहन की शादी कर दी, किससे? अर्जुन से, शाला बन गए, संबंधी बन गए, और क्या करते हैं, उनके साथी बन गए, बीच में घोड़ा ले चलो, रथ ले चलो, ले गए वहां। इस तरह से घोड़ों को धोते हैं। हनुमान जी को आदेश दिया अपने प्रिय भक्त को, देखो मैं राम हूं, मैं राम होकर के, मैं कृष्ण बनकर के इनका सारथी हो रहा हूं, तुम हनुमान होकर के भी तुम अर्जुन की सेवा करो, उनके रथ पर आना और सब समय रक्षा करना, भार दे दिया। हनुमान जी को भी पांडवों की सेवा में लगा दिया। तो पांडव लोग कैसे भक्त हैं, किंतु एक बार विश्वरूप उनको महाभारत के युद्ध में दिखला दिया, सारा विश्व उनके मुख के अंदर में दांतों तले में मरा पड़ा है। अर्जुन निमित्त मात्र भाव शब्द साची, निमित्त मात्र बन जाओ। अर्जुन ने कहा जे प्रभु हमने बहुत बड़ी भूल अपराध किया आपके, अब मैं सखा नहीं कहूंगा, आप तो जगत के सृष्टि करने वाले ईश्वरों के भी परमेश्वर के भी परमेश्वर हैं, मेरी गलती हुई क्षमा कर, आज से मैं कभी नहीं करूंगा। इनका प्रेम भी शिथिल हो गया, उनसे भी प्रेम किसका अधिक है? उद्धव जी का। और उद्धव ब्रज में गए, उनकी कहानी आपको सुनाया इन्होंने। उद्धव जी जब ब्रज में गए, कृष्ण ने भेजा उद्धव ब्रज में जाओ, मेरे माता पिता को मेरे विरह में जल रहे हैं और गोपियां मेरी जीव प्राण है, मैं जिनका प्राण हूं उनको सांत्वना दे, मैं संदेश देता हूं, उन संदेशों को सुनाना, अपनी तरफ से कुछ मत कहना। उनको भेजा, वहां गए, किंतु कृष्ण ने इसलिए नहीं भेजा जो सांत्वना दे, कृष्ण तो स्वयं जानते हैं मेरे गए बिना इनको सांत्वना नहीं होगा, जानते हैं, फिर भी भेजा। क्यों भेजा? मैं यहां बड़ा उदास रहता हूं, हमारे बिना गोपियां विरह में तड़पती हैं, एक दूसरों को सांत्वना देती हैं, और यहां मैं अकेला पड़ा हुआ, हमको कोई सांत्वना देने वाला नहीं है, मैं किनसे बात करूं? कोई ऐसा मथुरा में योग्य व्यक्ति नहीं है जो अपना हृदय, जो मुझे उनके माता पिता और ब्रजवासियों के विरह में क्या दुर्दशा हो रही कहने लगे। फिर मन में सोचा इनको भेज दूं वृंदावन में, ब्रज में भेजूं, जहां पर मैंने प्रेम की पाठशाला में मैंने शिक्षा ली है। देखो प्रेम दो प्रकार का होता है, एक कृष्ण में प्रेम है अपने भक्तों के लिए, और एक भक्तों का प्रेम है कृष्ण के लिए। हम लोगों को किस प्रेम की जरूरत है सोचिए, किस प्रेम की जरूरत है? कृष्ण का भक्तों के लिए प्रेम है और भक्तों का प्रेम है कृष्ण के लिए। अब हम लोग भक्त हैं कि भगवान हैं, तो हमें किसकी प्रेम की जरूरत होगी? भक्तों, और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है गोपियां, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है राधिका, तो राधिका कृष्ण के प्रति, कृष्ण का कृष्ण के प्रति राधिका जी का प्रेम कैसा होगा? इस प्रेम को पढ़ने के लिए गोपियों की पाठशाला में कृष्ण ने पढ़ा, यहां पर राधिका जी स्वयं प्रिंसिपल है, ललिता विशाखा जी क्या है, एक एक डिपार्टमेंट के हेड है, उनकी पाठशाला में यदि उद्धव पढ़ करके आए तो फिर हमारे पास आएगा, तो हम अपने विरह का भाग उसे बातचीत करेंगे, इसलिए भेजा। किंतु वो गोपियों की पाठशाला में एडमिशन नहीं ले सके, बैरन लौट आए, स्कूल को देखा, छात्रों को देखा, प्रिंसिपलों को देखा, कि उनके हृदय में प्रेम जो है वो नहीं देखा, नहीं तो उद्धव जी ब्रज से आते नहीं, लौटते नहीं, लौट करके आए। कृष्ण ने कहा जो देखा प्रेम, उद्धव जी तो वंदना कर रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्री नाम पाद रेणुम अभिक्षणशा जासां भरी कथोद गीत पुना यह सनातन धर्म है। लोग सनातन धर्म नहीं समझते, इसलिए शंकर जी क्या करते हैं, सब समय राम राम जपते हैं, कृष्ण कृष्ण जपते हैं, वृंदावन में गोपीश्वर महादेव गोपी बने हुए हैं जिस प्रेम के लिए, ये गोपीश्वर महादेव भी हनुमान जी ही हैं, समझो शंकर ही हैं, हनुमान जी बने हैं सेवा के लिए, इसलिए ये सनातन धर्म है। कहते हैं उद्धव जी वंदना करते हैं कि वंदे नंद आशाम हो चरण रेण जुषाम हम, मैं गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए वृंदावन में एक गुल्म लता दूब की घास भी बन जाऊं, और गोपियां चलते समय में अपने पैरों की धूलि हमारे ऊपर में अभिषिक्त कर हमारा जीवन सार्थक हो जाए, वेद की ऋचाएं ये लोग नहीं पा सकी हमें, और उनके इशारे पर कृष्ण उनके मुट्ठी में बंधे हुए हैं, इसलिए उनके चरणों की धूलि हो जाता कौन सी धूलि, एक भी धूलि हो जाता हमारा जीवन सार्थक हो जाए। एक धूलि चाहते हैं तो किसकी धूलि चाहते हैं, राधा जी के चरणों की धूलि चाहते हैं। इसलिए फौजी लौट गए बहन, वहां पर एडमिशन नहीं हुआ। तो उद्धव की ये दशा है, वो ऐसी वंदना करते हैं जिन गोपियों की, उन गोपियों के प्रेम की ऋण कृष्ण भी नहीं चुका सकते, वो स्वयं भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं किंतु ऋण नहीं चुका सकते। यदि गोपियां कहें हमने तुम्हें जो प्रीति किया है, प्रेम किया है, पति पुत्र भाई बंधु सबको छोड़ दिया है, सबको छोड़ करके आप हमारा भजन कीजिए, हमारे बनिए, कृष्ण कर सकते हैं, किसको छोड़ेंगे, किस गोपी को छोड़ेंगे, माँ यशोदा को, बाप पिता को छोड़ देंगे क्या, द्वारका मथुरा के भक्तों को छोड़ देंगे ना, अभी जो भजन कर रहे हैं उनको छोड़ देंगे। कृष्ण किसी को नहीं छोड़ सकते, इसलिए गोपियों के ऋण के सदा ऋणी बने रहते हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम अपने स्वाभाविक जो प्रेम है उसी से हमारे ऋण को हमें मुक्त कर सकते। यह है सनातन धर्म, इस चीज को समझिए। एक कृष्ण का भजन करने से सबका भजन हो गया, यहां तक कि राम नृसिंह कल्कि वामन हनुमान जी शंकर जी दुर्गा काली सबका भजन, नहीं तो तामसिक उपासना हो जाएगी। इसलिए तामसिक उपासना से निकल करके शुद्ध सत्य के निर्मल भगवान कृष्ण का भजन कीजिए। और भगवान के भजन में भी हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही होती, कृष्ण का नाम ही, कृष्ण का नाम ही, कृष्ण नाम ही एकमात्र। और इस कृष्ण नाम से भी श्रेष्ठ क्या है, राधा नाम, उसे कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए हरे कृष्ण नाम है, हरे से राधा और कृष्ण से कृष्ण और हरे से राधा और राम से यहां राधा रमण कृष्ण है, राधा रमण कृष्ण समझिए, राम मत समझिए, नहीं तो दो जो आदमियों की उपासना हो जाए। इस तरह से सनातन धर्म हमने बहुत सूक्ष्म रूप में बतलाया आप लोग, इसी तरह से रह करके भगवान का भजन करेंगे। बहुत समय हो गया।